माही के कदम वहीं जम गए जहां उन लड़कों ने उसकी तरफ देखा। उन तीनों ने एक दूसरे को देखकर कांदी स्माइल दी और फिर उनमें से एक ने अपनी गर्दन पर हाथ घुमाते हुए कहा, एक अकेली लड़की इतनी रात को इतनी सुंदर ड्रेस पहनकर आखिर जा कहाँ रही होगी? और उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि माही वो जो बोल रहे थे उसको साफ साफ सुन सकती थी। दूसरे लड़के ने अपने पास खड़े लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अक्सर लड़कियाँ इतनी रात को इतना सज धज कर ड्यूटी पर ही जाती हैं एक खास सर्विस देने के लिए। सुनकर तीसरे लड़के ने अपने कदम माही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हम भी अच्छी खासी रकम दे सकते हैं तुम्हारी उस सर्विस के लिए, बस डिपेंड करता है कि तुम हम तीनों को कितना सेटिस्फाइड कर सकती हो। माही का गला डर से सूख रहा था। उसने अपने होठों पर जबान घुमाते हुए हकलाती आवाज में कहा, आप जैसी मुझे समझ रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, बस मेरे ऑफिस का वर्कलोड ज़्यादा था और मैं लेट हो गई, मुझे अपने घर जाना है। अगर मेरे साथ बदतमीजी की तो मेरे घर वाले तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन तीनों ने माही की बात सुनकर किसी शैतान की तरह हंसते हुए कहा, तो और तुम्हें लगता है तुम्हारी इन खोखली धमकियों से हमें कोई फर्क पड़ेगा और हम तुमको जाने देंगे? एक लड़के ने अपनी उंगलियों को चटकाते हुए कहा, कितने दिनों बाद तो ये मौका मिला है। फिर उसने अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाकर एक अंगड़ाई लेकर कहा, इतनी जल्दी हम इस मौके को जाने नहीं देंगे। बीच वाला लड़का माही को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, और तू अगर हमारा साथ देगी तो तुझे भी मजा आएगा, वरना सिवाय चिल्लाने के तेरे पास दूसरा रास्ता तो वैसे भी नहीं है। उनकी ऐसी बात सुनकर माही की आंखों में पानी आ गया था और उसका दिल डर के मारे जोरों से धड़क रहा था। वो बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई तो फरिश्ता आ जाए उसे बचाने के लिए। वो तीनों अब माही के बिल्कुल करीब आ चुके थे। माही को पता था अब पीछे हटने से भी कोई फायदा नहीं है। तीनों ने माही को चारों तरफ से घेर लिया था। फिर उनमें से एक ने माही के कंधे पर गंदे तरीके से हाथ घुमाते हुए कहा, तो बोल कहाँ चलेगी, घर, होटल, ओयो या फिर ये खुला मैदान तेरे लिए सबसे बेस्ट है? बता कैसी डिजायर रखती है तू? आज अपनी सारी फैंटेसी हमारे साथ शेयर कर सकती है, हम एक एक करके उन सबको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इतना बोलकर तीनों ने एक दूसरे को हाई फाई दिया और फिर जोरों से हंसने लगे। माही खुद को बहुत ज्यादा बेबस महसूस कर पा रही थी। उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी, लेकिन अफसोस उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो उन तीनों का मुंह तोड़ पाए। दूसरे लड़के ने आगे बढ़कर के माही की कलाई थामनी चाही, लेकिन तभी अचानक किसी तूफान की रफ्तार से वहां दीक्षांत की गाड़ी आकर रुकी और तीनों लड़के एक पल के लिए डर के पीछे हट गए। माही ने अपनी आंसू भरी नजरों को साफ करते हुए सामने की तरफ देखा और दीक्षांत को देखकर मानो पहली बार उसे इतनी ज्यादा खुशी महसूस हुई थी, वरना हमेशा दीक्षांत के आने पर से डर, घबराहट और नफरत जैसे भाव ही आए थे। पहली बार वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी दीक्षांत को उसके पास भेजने के लिए। वो लगभग दौड़ते हुए गाड़ी के पास गई, तब तक दीक्षांत भी गाड़ी से उतर चुका था। माही उसके सीने से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। दीक्षांत ने एक हाथ से उसका सर सहलाया और फिर धीरे से कहा, तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ इन लोगों को अच्छी सर्विस देकर, ठीक है? माही ने पहली बार दीक्षांत की आवाज़ में अपने लिए कंसर्न महसूस किया और वो धीरे से हाँ बोलते हुए उससे अलग हुई और फिर गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई। उसे दीक्षांत की फ्रेग्रेंस अभी अपने आसपास महसूस हो रही थी। उसने अपने आंसू पोंछकर बाहर देखा, जहां अब दीक्षांत अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करते हुए उन तीनों लड़कों की तरफ बढ़ रहा था। माही का दिल अभी डर से जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि सामने तीन लड़के थे और दीक्षांत अकेला। लेकिन दीक्षांत को पता था उन तीनों ने ड्रिंक कर रखी है और वो दीक्षांत को हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। अगर उन लोगों ने ड्रिंक नहीं की होती तब भी दीक्षांत ही जीतता, लेकिन शायद दीक्षांत को भी 1-2-5 पड़ जाते। लेकिन उनकी हालत देखकर दीक्षांत बेफिक्री से उन तीनों के करीब बढ़ रहा था। एक ने पूरी हिम्मत जताकर दीक्षांत के चेहरे पर एक मुक्का चढ़ना चाहा, लेकिन दीक्षांत ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया और अगले ही पल उसका हाथ मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगाया। एक कट की आवाज वहां गूंज गई, जिसका साफ मतलब था उस लड़के का हाथ टूट चुका था। वो लड़का दर्द से चिल्लाते हुए सड़क पर गिर पड़ा। उसने अपने हाथ को कसकर पकड़ा और बुरी तरह रोने लगा। दीक्षांत ने उसके पास बैठकर उसके बाल सहलाते हुए कहा, ओ मुन्ना इतनी तेज लग गई क्या? दूसरे लड़के ने केक बनाकर दीक्षांत की पीठ पर चढ़नी चाही, लेकिन दीक्षांत ने घूमते हुए उसका पैर पकड़ लिया और अगले ही पल ठीक वैसे ही कट की आवाज उसके पैर से आई और उसका सर नीचे फर्श पर भिड़ गया और अगले ही पल उसके सर से खून निकल रहा था और वो दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़े चिल्ला रहा था। तीसरा लड़का तो उन दोनों की हालत देखकर ही डर चुका था। वो तुरंत घुटनों के बल बैठते हुए दोनों हाथ जोड़कर दीक्षांत के सामने गिड़बिड़ाते हुए बोला, भाई हमें माफ कर दो, आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, दीक्षांत ने एक मुक्का उसके मुंह पर चढ़ते हुए कहा। इस सड़क पर गुजरने वाली हर लड़की तुम तीनों की बहन है, और अब तो मैं तुम तीनों पर पर्सनली नजर रखेगा। मेरा ऑफिस यहीं पास में ही है, तो आइंदा से अगर किसी लड़की के आसपास भी घूमते दिखे तो सिर्फ हाथ या पैर नहीं तोड़ूंगा, बल्कि तुम तीनों को चार कंधों की सैर करवा दूंगा। उस लड़के ने दर्द से कराते हुए अपने चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर सीधा किया और फिर धीरे से बोला, जी सर हम समझ गए, आज के बाद हम किसी लड़की की तरफ गंदी नजरों से नहीं देखेंगे। दीक्षांत ने मुस्कुराकर अपने बालों में हाथ घुमाते हुए कहा, गुड बॉय, और यहां से गुजरने वाली हर लड़की तुम तीनों की बहन है। उस लड़के ने वापस बिल्कुल किसी आज्ञाकारी छात्र की तरह सर हिलाकर कहा, जी सर, इस सड़क से गुजरने वाली हर लड़की हम तीनों की बहन है। दीक्षांत ने फिर उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम इन दोनों को अस्पताल लेकर जाओ, और फिर खुद तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। और कुछ ही पलों में दीक्षांत की गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। माही अब भी सहम रही थी। दीक्षांत ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर माही की तरफ करते हुए कहा, तुम मुझे कॉल कर सकती थी। माही ने हैरानी से दीक्षांत की तरफ देखा, क्या अगर वो कॉल करती तो दीक्षांत उसकी हेल्प करने आता, तो वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। दीक्षांत तो चाहता ही है माही पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, और किसी लड़की को बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उसे ऐसे ही हवाइनों के बीच छोड़ दिया जाए, जो उसके जिस्म के साथ उसकी रूह भी नोच कहते हैं। माही के दिल में दीक्षांत के लिए बहुत सारा जहर भरा था, क्योंकि अभी जो कुछ हुआ उसमें कहीं ना कहीं दीक्षांत की भी गलती थी। माही ने फिर पूरी हिम्मत जताते हुए कहा, सर मुझे लगा आप जानबूझकर मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं, वरना तो आपको भी पता था इतनी रात को मुझे कैब नहीं मिलने वाली है, और मुझे तो लग रहा था इन तीनों लड़कों को आप नहीं भेजा होगा, आखिर आप मुझे बर्बाद जो करना चाहते हैं, इसलिए मुझमें हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपको कॉल कर पाऊं। दीक्षांत ने गुस्से में कहा, इल्जाम लगाने से पहले दो बार सोच लेना चाहिए कि तुम सामने वाले पर कितना घिनौना इल्जाम लगा रही हो। माही ने रोते हुए कहा, तो क्या आपको इतना नहीं पता था कि मुंबई में मुझे इतनी रात को अगर कैब भी मिलेगी तो वो कैब के ड्राइवर कैसे होंगे।
दीक्षांत को रियलाइज हुआ शायद माही सही बोल रही थी, इतनी रात को उसे अकेला छोड़ना दीक्षांत की सबसे बड़ी गलती थी, पर उसका ईगो उसे उसकी गलती मानने नहीं दे रहा था। उसकी खामोशी माही के बाकी के सवालों पर विराम लगा चुके थे। माही ने फिर आगे कोई सवाल नहीं किया, और कुछ ही देर में उनकी गाड़ी रावत मेंशन के सामने जाकर रुकी।